तीन साल बाद डिज़ायर्स के ऑफिस में हमेशा की तरह तफरी मची हुई थी। आरव ने पूरे स्टाफ को किसी स्पेशल वेंचर के लिए अपने अपने फ्रेश आइडियाज़ के साथ एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था। आज उन सबको अपना आइडिया आरव के सामने मीटिंग में पेश करना था। प्रेजेंटेशंस का ड्राफ्ट इस वक्त अयान की लैपटॉप स्क्रीन पर खुला हुआ था। उसके पास ही माहिरा और युवानी खड़ी थीं। जैसे जैसे वे दोनों इसे देख रही थीं, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव आ रहे थे। युवानी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे देखकर आरव सर इम्प्रेस होने वाले हैं। उन्होंने सबको पूरे एक महीने का टाइम दिया था और जब वो ये काम अपने सामने देखेंगे तो पक्का सब पर चिल्लाएंगे। मुझे भी यही लगता है, माहिरा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर अयान की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है अयान, तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद आया? माहिरा ने हमेशा की तरह वेस्टर्न ड्रेस के बजाय आज एक कैजुअल सूट पहना हुआ था और उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था। उसकी और अयान की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। सच कहूँ तो कुछ भी खास नहीं है, जब हमें ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो भाई को पसंद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस ड्राफ्ट के साथ हमने मीटिंग की तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उनके आने से पहले हमें कुछ करना होगा, अयान ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन कम टाइम में हम भी क्या कर सकते हैं, कोई नॉर्मल डिज़ाइन ड्राफ्ट होता तो फिर भी सोचते, यहाँ आरव सर अपनी पूरी एक नई कंपनी खड़ी करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इन आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, ऊपर से उनका टाइम वेस्ट करने की वजह से वो गुस्सा अलग से करेंगे, युवानी ने परेशान चेहरे के साथ कहा। आरव का गुस्सा सबसे पहले उसी पर उतरता था और इसी वजह से उसे टेंशन हो रही थी। लगता है अब मेरा प्रेजेंटेशन ही सबको भाई के गुस्से से बचा सकता है, अयान ने कंधे उचकाकर कहा। उसने भी अपनी तरफ से तैयारी की थी लेकिन आरव की एक्सपेक्टेशंस को देखकर वो भी पूरी तरह श्योर नहीं था। अयान ने अपना प्रेजेंटेशन खोला ही था कि तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इसी के साथ सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आरव सर ऑफिस आ चुके हैं, वो मीटिंग रूम में आप तीनों का वेट कर रहे हैं, दरवाजे पर अयान की असिस्टेंट दिशा खड़ी थी। हाँ, बस यही सुनना बाकी रह गया था, मेरा तो उनके सामने जाने से पहले ही सिर दर्द करने लग गया, अयान ने बेचारों सा मुंह बनाकर कहा। आपको तो वो कम से कम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे पक्का डांट पड़ेगी, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और फिर आपके कैबिन में क्या कर रही थी, पक्का उन्हें यही लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ आई थी, युवानी के चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव उभर आए थे। माहिरा ने उन दोनों की तरफ देखकर आंखें घुमाई और शांत लहजे में कहा, उसका तो रोज़ का है, अब तक तुम दोनों को आदत हो जानी चाहिए, कहते हैं टाइम के साथ इंसान बदल जाता है, लेकिन कुछ इंसान टाइम के साथ और ज़्यादा अजीब हो जाते हैं और तुम्हारा भाई उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुम मेरे सामने ही मेरे भाई की बुराई कर रही हो, अब जल्दी चलो वरना तुम्हारे हिस्से की डांट मैं नहीं खाने वाला हूँ, अयान ने हल्के लहजे में कहा। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पहले की तरह चल रही थी, आरव के लिए आज भी उसका काम सबसे ज़्यादा मायने रखता था। ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अयान उस व्यस्तता में भी अपनी ज़िंदगी जीना जानता था। माहिरा मुस्कुराते हुए अयान के साथ मीटिंग रूम में आई। जिन जिन लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी वे सब वहाँ मौजूद थे। वहीं उनके पीछे युवानी भी हड़बड़ाते हुए कुछ फाइल्स के साथ अंदर आ रही थी। जैसे ही आरव की नज़र युवानी पर पड़ी, उसने तंज भरे लहजे में कहा, अच्छा तो मिस युवानी को याद आ गया कि वो मेरी असिस्टेंट है, तुम्हें यहाँ सबसे पहले आना चाहिए था और तुम सबसे आखिर में कदम रख रही हो। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप लेट आओगे, युवानी ने बहाना बनाया। मैं युवानी नहीं हूं ना जो लेट आऊंगा, मुझे अपना काम टाइम पर करना होता है, अब अंदर आओ, आरव ने सख्त आवाज में कहा। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वहां मौजूद हर एक शख्स पर नजर डाली। उसने कहा, यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को अगर लगता है कि उसकी प्रेजेंटेशन मुझे 1% भी इम्प्रेस कर सकती है तो वो यहाँ रुक सकता है, बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी प्रेजेंटेशन देखकर अपना टाइम वेस्ट करूँ। उसके बोलने का लहजा काफ़ी ठंडा था। एटलीस्ट तुम हमें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका तो दो, तुम पहले ही सबको डीमोटिवेट कर रहे हो, रेयान बोला। वहाँ कुछ नए डिज़ाइनर्स भी मौजूद थे जिन्हें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद के काम को इम्प्रेसिव कह सकें, वे मुझे क्या इम्प्रेस करेंगे, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। उसका लहजा और ऑरा देखकर नए डिज़ाइनर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे करके मीटिंग रूम खाली होने लगा था, वहाँ सिर्फ अयान, माहिरा और रेयान ही बचे थे। मैंने कहा था तुम उन्हें डरा दोगे, रेयान ने आरव को घूरते हुए कहा। इसमें मेरी क्या गलती है, वे सब अंडर कॉन्फिडेंट थे, ऐसे लोगों को मैं अपनी नई कंपनी के लिए बिल्कुल हायर नहीं करने वाला हूँ, आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर माहिरा की तरफ देखा। माहिरा, जॉब वैकेंसी निकालो, मुझे कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स चाहिए जो सच में टैलेंटेड हों और उनके साथ ये कंडीशन भी रखना कि उन्होंने पहले कहीं जॉब ना की हो,
अजीब बात है, एक तरफ तुम्हें परफेक्ट काम चाहिए और दूसरी तरफ तुम नॉन एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने की सोच रहे हो। जिन्होंने पहले काम ही नहीं किया वे टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं, रियान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने भी सबसे पहले डिजायर्स ही ज्वाइन किया था और मैंने तुम पर ट्रस्ट दिखाकर तुम्हें अपना हेड डिजाइनर अपॉइंट किया था। नए लोगों में सीखने की चाह होती है, उनके आइडियाज भी फ्रेश होते हैं, आरव ने समझाया। इससे पहले कि उन दोनों के बीच कोई बहस होती अयान जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, हम वैकेंसी डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले आप डिजाइनर्स क्यों हायर कर रहे हैं? क्योंकि बाकी का स्टाफ आराम से मिल जाएगा, सबसे पहले मुझे कुछ अच्छे और टैलेंटेड डिजाइनर्स चाहिए। चलो अपने काम पर लग जाओ, शुक्र मनाओ कि फैमिली से हो इसलिए कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, अब नेपोटिज्म का कुछ तो फायदा होगा, आरव ने जल्दबाजी में कहा। हालांकि अपनी बात पूरी करते ही उसकी आंखों में मायूसी उतर आई थी। सिर्फ वही नहीं, अयान और माहिरा भी बिल्कुल चुप हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरव के ये शब्द उसके नहीं बल्कि किसी और के हों। ठीक है, हम चलते हैं, अयान बोला और माहिरा के साथ बाहर आ गया। उनके पीछे पीछे रियान भी चला गया था। आरव अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने प्रोजेक्टर की स्क्रीन को ऑन किया जिसमें उसकी नई डिजाइनिंग कंपनी कारव के ऑफिस का वीडियो चल रहा था। आरव ने स्क्रीन को कारव के नाम पर रोक दिया था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दूसरी तरफ अनुष्का और मंथन की कंपनी नुश ने भी बीते सालों में अपना अच्छा नाम कमा लिया था। मंथन ने दिन रात एक कर दिया था, आज भी वो यही चाहता था कि उसकी कंपनी चंडीगढ़ की टॉप डिजाइनिंग कंपनियों में से एक हो। मंथन अपने कैबिन में बैठकर कंपनी की हेड डिजाइनर रेशा के साथ मीटिंग कर रहा था। कंपनी के ज्यादातर फैसले वे दोनों मिलकर ही लेते थे और कंपनी में उसका कुछ शेयर भी था। रेशा ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट मंथन के सामने रखा और कहा, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें किसी नई मॉडल को हायर करना चाहिए। मैं तुमसे कहने ही वाला था, कंपटीशन काफी बढ़ गया है। हमारी मॉडल पहले ही काफी कैटलॉग्स के लिए शूट कर चुकी है, इस बार कुछ नया होना चाहिए, मंथन ने तुरंत उसकी बात पर सहमति जता दी थी। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? रेशा के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे। हाँ बोलो, और मैं क्यों बुरा मानूंगा, तुम जानती हो कि तुम्हारे फैसले मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मंथन ने हल्का मुस्कुराकर कहा। जब तुम डिजायर्स के साथ काम करते थे तब आरफ खुराना का एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन आया था, वो काफी हिट हुआ था और ख्वाहिश की मॉडल उसकी जान थी। उसने आगे किसी और के लिए शूट नहीं किया, कैसे भी करके अगर उससे कांटेक्ट हो जाए तो हमारे ब्रांड को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, रेशा बोली।
रायशा दरअसल आरव, आयु और मंथन के अतीत के रिश्ते से पूरी तरह अनजान थी। वैसे भी वो उस कलेक्शन के बारे में इस वजह से जानती थी क्योंकि उसे बाद में विदेशों में भी लॉन्च किया गया था। रायशा की स्टडीज भी अब्रॉड में हुई थी तब उसने उस कलेक्शन को देखा था। मंथन ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। रायशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जल्दी से बोली, क्या तुम उसे जानते हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे ही होते हैं जिन्हें पलटकर ना देखा जाए तो उसी में हमारी भलाई होती है। जरूरी नहीं कि अतीत की सारी यादें अच्छी हों, कुछ यादें हमारे उन जख्मों को कुरेद देती हैं जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, मंथन ने बिना किसी भाव के कहा। रायशा आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मंथन ने बातचीत का रुख बदल दिया था। खैर छोड़ो, मैं उसे बात करने की कोशिश करूंगा, बाकी जरूरी नहीं कि वो मॉडलिंग के लिए हाँ कहे, तुम चाहो तो वैकेंसी डाल देना या फिर किसी मॉडलिंग एजेंसी से कांटेक्ट कर लेना, मंथन बोला। रायशा ने भी उसके मायूस चेहरे को देखकर आगे कुछ नहीं पूछा, उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही मंथन ने टेबल का ड्रॉर खोला, उसमें एक फोटो फ्रेम था जिसमें वो और अनुष्का साथ थे। उसे देखकर मंथन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। चंडीगढ़ से थोड़ी दूर बसे मोहाली शहर के पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाया गया था। शहर के शोर शराबे से दूर होने के कारण चारों तरफ काफी शांति थी। आसपास थोड़े बहुत घर भी थे लेकिन वे उस घर से काफी दूर थे। नीचे का काफी सारा हिस्सा फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था जबकि नीचे के फ्लोर को बेसमेंट में बदल दिया गया था। उसके ऊपर के दो फ्लोर रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आसपास की हरियाली उस घर की शांति में चार चांद लगा रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। उस शांत माहौल को देखकर एक बार के लिए लगता था कि वहां कोई नहीं रहता है। अचानक उस शांति में खलल डालते हुए वहां एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। मम्मा, मम्मा, सुबह सुबह कहाँ चली गई आप? मम्मा कहाँ हो आप? कैसा लगा न्यू एपिसोड? इनकी लाइफ में अब तरक्की कर गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर समीक्षा करना ना भूलें।